الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبيك الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے احکام تجارت درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوال کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جی جناب
محمد نواز عطاری رحیم یا خان سے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے مہینہ پہلے کا مال لیا ہوا ہے اس کا ریٹ کم تھا اب ریٹ بڑھ گیا مال وہی ہے کیا اس کا ریٹ بڑھا سکتے ہیں یا پہلے ہی خرید والے ریٹ پہ دینا ہوگا اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مارکیٹ میں آج جو بھاؤ چل رہا ہے اگر آپ اس بھاؤ سے بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی کباہت تو نہیں ہے آپ بیچ سکتے ہیں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مال بھاؤ کے حساب سے بیچا جاتا ہے جو مارکیٹ کا بھاؤ ہوتا ہے اور شریعت میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں مارکیٹ بھاؤ کی بڑی اہمیت ہے جیسے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے اور آپ کے پاس وہ چیز ہے مال تجارت ہے تو اب آپ قیمت خرید کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ اس دن کا اعتبار کریں گے کہ جس دن زکوٰۃ نکالنی ہے اس دن اس کا اوپر مارکیٹ میں کیا بھاؤ ہے تو یوں اگر آپ اس بھاؤ سے بیچتے ہیں تو کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے سستا بیچیں گے ثواب سمجھ کے مسلمانوں پہ احسان کرنے کی نیت سے ان کا بوجھ کم کرنے کی نیت سے تو اس میں نیکی کا پہلو بھی موجود ہے
ٹھیک مجھ سے ایک سوال ہے کہ انٹرنیشنلی جب تجارت ہوتی ہے ہماری یہاں ڈالرز میں رقم آتی ہے زیادہ تر ڈالرز میں آئے پاؤنڈز میں آئے کسی میں بھی آئے ڈالرز کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں ڈالرز میں آئی رقم تو اب جب وہ رقم بینک میں آتی ہے تو بینک جو دے گا وہ تو یہ ہماری جو مقامی کرنسی ہے روپیہ وہ دے گا اور اوپن مارکیٹ یعنی مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ اپ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں تو جو جس کی ملکیت میں ڈالر آئیں جب وہ نکالے گا تو بینک تبدیل کر کے دے گا یعنی کرنسی دے گا اس کے مطابق پاکستانی روپیز دے گا تو اب یہ اگر اس امید پہ رکتا ہے کہ شاید ڈالر کے ریٹ کچھ بڑھ جائیں تو وہ مجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا جب وہ چینج کریں گے تو اس نیت سے رکنا اور پیسے کو رکھنا درست ہوگا یا نہیں
دیکھیے کوئی غیر قانونی کام تو یہ کر نہیں رہا
ٹھیک ہے
اگر آئے ہیں اور وہ سودی اکاؤنٹ میں بھی نہیں گئے اور وہ رکھے ہوئے ہیں کسی جگہ پر اور یہ نہیں نکال رہا تو اس میں کسی طرح کی کباہت تو نظر نہیں آ رہی شرعی اعتبار سے اور نقصان کا پہلو بھی ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو ڈاؤن بھی تو ہو سکتا ہے
جی مختلف
ضروری تو نہیں نا کہ وہ آپ ہی ہوگا تو خیر اس طرح کے رسک کاروباری دنیا میں لینا ایک عام سی بات ہے اس کو ہم غرر تو نہیں کہہ سکتے تو اس میں کوئی حرج تو نظر نہیں آتا
ٹھیک اسے ایک سوال کا جواب آپ نے پچھلے پروگراموں میں دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی دکان پر ایڈوانس رقم رکھوا دی ہے رقم رکھوائی اس کے بعد ایڈوانس کے بھائی جو بھی ہم سامان لیں گے اس میں کاٹ لینا کریانہ کی دکان کی مثال آپ نے ارشاد فرمائی تھی تو اب جب وہ سودا لے گا اور جو یہ معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں سودی پہلو پایا جاتا ہے تو اس پہ ایک سوال ہے کہ اس میں سود کا لین دین تو نہیں ہو رہا عملاً اور دکاندار کوئی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں آفر کرتا ہے کہ تم نے پیسے رکھوا دیے تو ڈسکاؤنٹ ہے البتہ یہ ہے کہ ہم اس سے کم یا زیادہ کا سامان لیتے ہیں مہینے پہ پھر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بل پر تبدیل کر لیتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا
دیکھیے علماء نے دو صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر رقم رکھوائیے امانت کے طور پر کہ وہ اس رقم کو خرچ نہیں کرے گا تب تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے اگر وہ اس کو خرچ نہیں کرتا اپنے استعمال میں نہیں لاتا دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو رقم دی ہے قرض کے طور پر تو یہاں قرض دے کر نفع اٹھانا ایک اعتبار سے پایا جاتا ہے اور اسی اعتبار کا فرض کرتے ہوئے علماء نے اس مسئلے کو ناجائز لکھا ہے
ٹھیک مجھ سے کسی کام کے اندر جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں एक शख्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरा मेहनत कर रहा है, इसमें उसकी तनख्वाह का तयन किया जा सकता है या नहीं? बाज़ औक़ात यूँ होता है कि जो वर्कर है यानी जो उनका वर्किंग पार्टनर है वो काम तो करेगा लेकिन वो साथ में अपनी तनख्वाह भी मुय्यन करवाना चाहता है, ये पहलू कैसे बनेगा? यानी शायद मुदारबत की सूरत बनती है लेकिन उसमें तनख्वाह का जवाब कैसे होगा या क्या हुक्म होगा और कोई सूरत बन सकती है या नहीं?
देखिए, वर्किंग पार्टनर तो एक मुभम सा लफ्ज़ है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि दोनों शराकत कर रहे हैं, दोनों का इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है,
और एक स्लिमिंग पार्टनर है और एक एक्टिव है,
ठीक
इन
है
माना में आप वर्किंग पार्टनर कहें।
जी।
दूसरा मुदारबत में होता है कि एक का पैसा है और एक जो है वो वर्किंग में है तो वो भी वर्किंग पार्टनर कहलाता है। दोनों ही जगहों पर तनख्वाह की गुंजाइश नहीं है।
सही।
जो मुदारबत में है
जी
वो अपना नफा होगा तो मेहनताना लेगा, उसका जो मेहनत का सिला है वो नफे में रखा गया है।
सही।
जब तक नफा नहीं होगा उसके लिए अलग से कोई चीजें नहीं है। यहाँ तक के फुकहा तो यहाँ तक लिखा हुआ है, अगर वो शहर में है
जी
तो खाने पीने ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी उसको नहीं मिलेंगे,
सही,
शहर से बाहर तो मिलेंगे मुदारबत में।
जी।
शराकत के अंदर यह है कि शराकत के अंदर वो खुद पार्टनर है, उसका अपना पैसा है, कंपनी में उसका अपना हिस्सा है। मिसाल के तौर पर अगर वो 50,000 रुपये उठाता है तो 25,000 रुपये तो खुद अपने माल से उठा रहा है वो,
सही,
तो अपने ही काम पर जो तनख्वाह है वो नहीं होती।
अगली कॉल दीजिए।
मेरा मुफ्ती अली असगर साहब की बारगाह में ये सवाल है कि हमारा ऑनलाइन कारोबार भी है जिसमें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे कस्टमर को कुछ आइटम्स के फोटोज़ या वीडियोस भेजते रहते हैं, साथ में कभी डिटेल्स वगैरह भी भेजते हैं। अब अगर कोई कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो हमें मैसेज या कॉल करता है तो हम उससे रिप्लाई देते हैं कि आप हमें एडवांस पेमेंट कर दीजिए बुकिंग के नाम पर, या हमारी दुकान पर आया होता है तो हम उससे बुकिंग के नाम पर हाफ या फुल पेमेंट वसूल करते हैं। अब हम दूसरे या तीसरे दिन हम अपने ऊपर वाली दुकान पे जहाँ से हमें माल खरीदना होता है उसके पास जाकर वो चीज़ चेक करके हम लेते हैं और चेक करके हमारे कस्टमर को हम बेचते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम अपने कस्टमर से पेमेंट हमारे पास आया उस वक्त वो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं थी, दूसरे दिन हम खरीद कर लाए हैं तो अब वो बुकिंग के नाम पर हाफ या फुल पेमेंट लिया, वो हराम की रोज़ी कहलाएगी और करने वाला और ख़रीदने वाला क्या गुनहगार होगा? और साथ में ये सवाल है कि अगर हम अपने कस्टमर का पेमेंट आने से 2 या 3 मिनट पहले हम अपनी ऊपर वाली दुकान पर कॉल करके वो चीज़ साइड में रखवा ले या पेमेंट करके साइड में रखवा ले तो क्या इसकी गुंजाइश निकल सकती है? बहुत सारे मुसलमान इस काम में इन्वॉल्व हैं तो क्या ये सारे गुनहगार कहलाएंगे? अब इससे सही मानों में करने की क्या सूरत है?
देखिए, खरीद व फरोख्त के जो बुनियादी मसाइल हैं उसका सीखना हम सब के लिए ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इस ताल्लुक से हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। हदीस पाक में है, ला तबी माले साइंदक, तेरी मिल्कियत में जो माल नहीं है तो उसे ना बेच। तो इस सूरत के अंदर माल का आपने सौदा कर लिया, पैसे पकड़ लिए, हालांकि वो माल आपकी मिल्कियत में ही नहीं है, तो थोड़ा सा ठहराव लाते हुए ग्राहक के साथ जो आपकी इंगेजमेंट है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। पहले हिस्से में आप सिर्फ बुकिंग कर लें, सिर्फ आप प्रॉमिस कर लें और सिर्फ एक वादे की हद तक उससे बात कर लें कि ठीक है, बार्गेनिंग हमारी हो गई, इसमें हम सौदा लॉक करते हैं लेकिन बतौर वादा हम आपसे डन नहीं कर रहे, माल हमारे पास आ जाएगा तो हम आपको डन कर देंगे, माल जाके आप खरीद लें। खरीदने के बाद इससे दोबारा रब्ता कर लें, सिर्फ आपको एक स्टेप बढ़ाना है। अब ये नहीं है कि जनाब इसमें कोई परेशानी है, दुश्वारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, सिर्फ आपने एक तरीकाकार इख्तियार करना है। पहले दफ़ा में ग्राहक को भी थोड़ा अजनबी लगेगा लेकिन फिर जब उसको पता चल जाएगा कि आपकी रूटीन यही है वो भी कंप्रोमाइज़ करेगा आपके साथ, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो अब तक किया वो तो बिलाशुबा गैर शरई मामला है और बेबातिल तो मिल्कियत में नहीं आती सामने वाले के, गैर मुस्लिम के साथ तो फिर भी ये है कि बेफासद चल जाती है, क्योंकि अगर सामने गैर मुस्लिम हो तो, लेकिन बेबातिल का तो मामला ही अलग है, तो मिल्कियत में ही नहीं आएगी।
आकाम तिजारत का तजुर्बा यह है कि बाज़ औक़ात रमज़ान शरीफ के आखिर में या ईद के बाद सवाल आ रहे होते हैं, वो सवाल मैं पहले कर रहा हूँ, वो ये कि क्योंकि रमज़ान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का मामला होता है और मस्जिद में एक फ़र्द या दो अफराद न इंट्रोड्यूस होते हैं, इन मानों में कि पूरे साल तो इमाम खतीब और इमाम मौजिन और खादिम वगैरह होते हैं, लेकिन तरावी सुनाने वाले अफराद हाफिज साहब और सामे ऐड होते हैं। अच्छा, मस्जिद कमेटियाँ भी मुख्तलिफ नोयत की हैं, वो अपने तौर पर चला रही होती हैं। हाफिज साहब और सामे जो होते हैं वो भी उनकी पूरे साल की रूटीन में ये नहीं होता, कुछ और मसरूफियात होती हैं। तो अब जब ये आते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में शायद मुख्तलिफ रूटीन होगी, लेकिन एक बात तय है कि इनको कुछ ना कुछ लेना देना होता है, चाहे वो तहाइफ की सूरत में हो, चाहे हदीये की सूरत में हो, चाहे इजारे की सूरत में हो। इस हवाले से मैं चाहूँगा कुछ ऐसी रहनुमाई मिल जाए, क्योंकि अभी हज़ारों लाखों जगह पर यह काम होना है, तो एक रहनुमाई मिल जाए दोनों अफराद के लिए।
देखिए, कुरान पाक जो सुनाना है उसका मुआवजा नहीं ले सकते, कुरान पाक पढ़ाने का मुआवजा ले सकते हैं, यानी पढ़ाना जो है वो तालीम है,
टीचिंग है,
टीचिंग है। तो तालीम व तदरीस और इमामत, इसके हवाले से तो उलमा ने इजाज़त दी है, लेकिन जो हाफिज़े कुरान आते हैं, अगरचे वो इमामत करते हैं लेकिन इमामत तो इमाम भी कर रहा है, उनका असल मकसूद होता है कुरान सुनाना। कुरान सुनाने के लिए उनको लाया जाता है, और तिलावत करने का मुआवजा लेना उलमा ने इसको नाजायज़ लिखा है। अब उलमा ने इसका तरीका ये बयान किया है कि ये अपने वक्त का एक मुआहदा करें कि मिसाल के तौर पर ईशा की नमाज 8:30 बजे होनी है, तो 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक ये मैं टाइम का आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ, इस टाइम में मेरे मनसब के मुताबिक आप जो चाहे काम ले लें। तो यूँ वो टाइम का मुआहदा करने के बाद अपना एक एग्रीमेंट करें और पहले से तय करके करें। बाद वक़्त जो है यहाँ पे थोड़ी सी शर्मा शर्मी का मामला चल रहा होता है, और एक बंदा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, मस्जिद वाले कुछ और समझ रहे होते हैं, या वो बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि मिसमैनेजमेंट होती है, इतनी लंबी लिस्ट होती है, बंदा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हेमरोज भाई
जी,
जैसा कि इन्होंने वज़ीर आज़म बनाना उसको, ठीक है, और पूछे हाँ भाई इमाम साहब को पैकेज क्या देंगे, हाँ हमारे पास तो इंतज़ाम ही नहीं कुछ, तो फिर जैसा इंतजाम
तो नहीं है तो फिर
वैसा बंदा लेकर आए आप। मिसाल के तौर पर आपकी मस्जिद में कम नमाजी हैं
जी,
होता ये है कि जिसके अंदर सलाहियत ज़्यादा होती है, आवाज़ अच्छी है, या उसकी डिमांड ज़्यादा है,
ठीक है,
तो उसके पास तो कई मौके होते हैं, वो कहीं और भी मूव हो सकता है,
ठीक है।
बाद अवकात बंदा ऐसा नहीं कि पैसे की वजह से मूव हो रहा है, वो चाहता है कि भाई ज्यादा लोगों को मुझसे फायदा पहुंचे,
ठीक है, मुख्तलिफ रीजन हो,
मुख्तलिफ अच्छी नीयतें भी होती हैं,
ठीक है।
तो उसको आप बाउंड कर देंगे छोटे से एरिया में ला के और 6 नमाजें पीछे खड़ा करके, और वो नफसियाती तौर पर उसके सारे मोरल हेड जो है ना वो गिर जाए, तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे जो है वो शोक जोक उसका बरकरार रहेगा, इसको भी देखना जरूरी है।
मुझसे इसमें ये भी इरशाद फरमाएगा, मैं चारों एक पूरी बात हो जाए, इसमें ये भी होता है कि बाद अवकात के जो भी लेना देना का था टाइमिंग के हिसाब से तय हो गया, लेकिन हमारी यहाँ मसाजिद में उर्फ आदत ये है कि इसके लिए बाकायदा चंदा डोनेशन किया जाता है, बाद अवकात वो डोनेशन ज़्यादा हो जाता है, जो तय हुई हुई रकम है जितने एक्सपेंसिस होने उससे ज़्यादा हो जाता है, तो कमेटियाँ क्या करती हैं कि वो तकसीम कर देती हैं, इन्हीं में तकसीम कर देती हैं, इजारा तो कम का हुआ है लेकिन ज़्यादा दे देती हैं, तोहफे के तौर पर दे देती हैं, तो इसकी इजाज़त होगी या नहीं। दूसरा ये कि एक तो मस्जिद कमेटी के साथ मामलात हैं, फिर जब वो तरावी सुनाते हैं तो मुख्तलिफ अफराद बाज़ोकात तहाइफ भी देते हैं, नकद रुकूमात भी देते हैं, उनका क्या हुक्म होगा?
देखिए, वो अफराद ना तो कोई मुआहदा करते हैं, ना उनकी तरफ से कोई फाउंडेशन होती है, अपनी रजामंदी और खुशी से देते हैं, उसका तो मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ऐसा है कि वो देना नाजायज़ है, शोक जोक की बात है, वो देखते हैं हाफिज़ साहब हैं, पूरा महीना आए हैं, उनसियत कायम हो जाती है, एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है, और उस मोहब्बत और रिश्ते के पेश नज़र, कुरान पाक की ताज़ीम के पेश नज़र, वो ये एक वो हाफिज़ कुरान जिसके सीने में कुरान है उसकी खिदमत करके नेकियां हासिल कर रहे होते हैं,
ठीक है। और मुझसे कमेटी जो इजाफी दे रही
है, कमेटी जो इजाफी देती है, तो देखें ऐसा तो होगा नहीं कि 50,000 का उन्होंने एग्रीमेंट किया था और इजाफी उन्होंने ऊपर से 1 लाख दे दिए,
नहीं ऐसा तो नहीं,
ऐसा तो नहीं होगा ना
जी,
थोड़ा बहुत होता होगा, जितना उर्फ है
जी
उतनी खिदमत चंदे से की, जो अलग से चंदा किया उन्होंने
जी
उसमें भी उसका उर्फ देखा जाएगा,
ठीक है, वो बच गया तो वो चाहते हैं इसी में,
अगर उस उर्फ उसका यही है तो कोई इशू नहीं है,
ठीक है। मुफ्ती, एक सवाल आया हमारे पास सोशल मीडिया से, हुज़ैफ़ा शरीफ हैं और ये कह रहे हैं कि किसी ने सूद ले लिया है और अब वो शर्मिंदा भी है, नादिम भी है, सूद तो रिटर्न करना है, तो अब इसकी तलाफी की क्या सूरत होगी कि ये सूद ना रहे?
देखिए, बग़ैर सवाब की नीयत के मुस्तहिक के ज़कात को देकर उससे जान छुड़ाएंगे, उसको धोने की कोई तरकीब नहीं है। ठीक है, वो मैल है, गंदगी है, माले खबीस, माले हराम है, उससे बरात की एक ही सूरत है कि मुस्तहिक के ज़कात को बग़ैर सवाब की नीयत के दे दिया जाए।
उससे ये जो ये सूद यानी इनकम के अतबार से नहीं कह रहे, इन्होंने सूदी रकम ली उधार, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कह रहे हैं सूद के साथ वापस करना होगा, तो समझ में यही आ रहा है।
देखिए, जब कर्जा ले जाता है सूदी कर्जा, तो जो कर्जे की रकम है वो तो पाक रकम होती है। अब जो इजाफा देना होता है वो माल हराम होता है, तो जो इजाफा है वो माल हराम होगा। तो फौरी तौर पर ये एग्रीमेंट ख़त्म करके और इसका मुकमुका किया जाए, वरना एग्रीमेंट जारी रहेगा, सूद आप देते रहेंगे। बाद अवकात ऐसी पोजिशन होती है कि बंदा फौरी तौर पर रकम की अदायगी पर कादिर नहीं होता, गलती हो गई उससे, अब फौरी तौर पर पैसे नहीं है इसके पास।
जी,
तो अब हसब इस्तात जब भी ऐसा मौका पहली दफ़ा आता है कि आपकी इस्तात बन जाती है, तो फौरी तौर पर इससे जान छुड़ाना ज़रूरी है।
तो उसमें माफ़ हो जाएगा फिर?
जी,
फिर माफ़ हो जाएगा,
तौबा करनी होगी उसके बाद।
ठीक,
दोनों सूरतों में सूद लिया हो या दिया हो, जो भी तरीक़ेकार बयान हुए, इन तरीक़ेकार के बाद अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करना ज़रूरी है। क्योंकि सच्ची तौबा करने के लिए पहला मरहला है उस गुनाह से पीछा छुड़ाना।
ठीक है, उससे तो अलग हूँ पहले।
उससे अलग होना पहला मरहला है।
ठीक,
एक बंदा बदनिगाही भी कर रहा है और तौबा तौबा भी कर रहा है,
जी,
तो तौबा कैसे होगी?
ठीक,
तौबा तो नदामत का नाम है,
जी,
नदामत तर्क के फेल का नाम है।
सही,
मतलब ये फेल ना सिर्फ तर्क करेगा बल्कि कभी ना करने का आज़म करेगा,
सही,
इसी का नाम तौबा है। तो उससे जान छुड़ाना ज़रूरी है।
ठीक,
ताखिर वाले मसले में यह है कि इसकी तौबा पहले भी हो सकती है।
ठीक है, रुजू तो कर लिया,
यानी अब इसके पास इस्तात नहीं है
ठीक है
पैसे वापस करने की, तो उसी वक्त तौबा कर ले, और जब सारे मामले से बरी जिम्मा हो जाए तो फिर भी अल्लाह के बारगाह में रुजू लाए और तौबा करे।
ठीक है, और मुझे क्या पता तौबा करने की बरकत से इसके जो ताखीर हो रही है वो जल्दी आसानी हो जाए, कोई सहूलत बन जाए ऐसी?
देखिए, मुस्तर की दुआ कबूल होती है, जो कबूलियत के असबाब बयान हुए हैं कि मुस्तर की दुआ कबूल होती है।
मुस्तर कौन सा?
मुस्तर वो होता है जो बेबस हो, कोई आस ही ना हो, सारी जो दुनियावी असबाब खत्म हो जाए।
ठीक है, उम्मीद ही नहीं है कोई, टूटी हुई उम्मीद दुनिया से,
टूटा हुआ आदमी।
ठीक है,
तो अब इसके पास बोझ है, कर्जा है, देना है, कैसे दें, तो बेबसी तो है ना।
जी,
तो अब ये मुस्तर है और मुस्तर है तो दुआ करे अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाने वाला है।
सुभानअल्लाह, अल्लाह आसानी फरमाए, तौबा की भी तौफीक अता फरमाए। अगली कॉल शामिल सिलसिला कर रहे हैं। जी जनाब,
इदारे में जो करता हूँ मुझे ना सरकारी क्वार्टर मिल हुए हैं, तो ये होता है कि एक परफार्मा करवाना पड़ता है, उस पर मैंने लिखा था कि डिस्टम्बर और पेंट करवाना है क्वार्टर का, तो उन्होंने मुझे 28,000 रुपए दे दिए हैं, और अभी जो डिस्टम्बर और पेंट वगैरह आ गए 6-7 हजार रुपए में, बाकी पैसे बचते हैं। क्वार्टर पे अगर मैं कोई सामान लाता हूँ इसके अलावा, तो क्वार्टर के लिए सिर्फ अपने जाती इस्तेमाल में तो मैं ला ही नहीं सकता, सरकारी पैसे हैं, तो क्या इसकी इजाजत होगी? अगर मैं वापस किसी को देता हूँ तो वो वापस है तो वो सरकारी उसमें नहीं जाएंगे, इधर हर बंदा अपनी जेब में डाल लेते हैं।
अल्लाह आपको सलामत रखे, सब कुछ मजा है।
देखिए, इतनी बात तो इनकी किसी हद तक समझ में आती है कि वापस नहीं जाएंगे, ये जो मतलब प्रैक्टिकल नजर आ रहा है, लेकिन मैं हैरान हूँ पूरे घर का डिस्टम्बर और पेंट 7,000 रुपये में कैसे हो गया?
किसी थोड़े से हिस्से का
7,000 रुपये तो जो है मजदूरी नहीं बनेगी। ठीक है,
अब जो
तो थोड़ा सा इन्होंने कोताही की होगी डिस्टम्बर पेंट करवाने में, तो वरना तो सिर्फ दरवाजों का पेंट शायद से ज्यादा में हो जाए, खिड़की दरवाजे ये लेंगे तो उसका पेंट से ज्यादा में हो जाएगा। तो देख लें आप, जहाँ से पेंट उखड़ रहा है या जहाँ मजीद तजीन की गुंजाइश है, तो उसी मद में खर्च करें, यह जरूरी है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
अगर कोई आदमी कर्ज ले तो उस पर वापस कर तो जो पैसा लेते हैं फालतू, क्या उस जायज है या नाजायज है?
देखिए, कोई कर्ज देकर पैसा लेता है तो ये तो सूदी मामला है, यानी मशरूत तौर पर पैसा वापस लेना कर्ज पर خالصتاً سود ہے تو یہ تو تجارت نہیں ہے، تو سودی معاملہ ہے.
تو بالفرض اگر کسی کے پاس اسی طریقے سے رقم آئی اور اس نے کوئی نیا کاروبار اسے شروع کر لیا یا رننگ جو بزنس تھا اس میں لگا چکا وہ، کیونکہ ابھی تلافی کی بھی بات ہوئی تھی پیچھے، تو اگر وہ لگا چکا تو اب کیا کرے وہ؟
دیکھیں ہم نے بارہا اس مسئلے کو بیان کیا ہے، قرض لے لیا ہے اگرچہ وہ سود پہ لیا ہے تو جو یہ اضافی دے گا وہ سود ہے.
جی
فعل یہ غلط تھا، حرام پہ کام کا مرتکب ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو رقم اس نے لی ہے یہ تو پاک رقم کہلائے گی، اگر یہ کسی کام میں لگی ہے تو اس کو حرام نہیں کہیں گے، اس کی جو نتائج تفریحات نفع جو حاصل ہوگا وہ مال حرام نہیں ہوگا، مال حلال ہی ہوگا.
سودی صورت میں آنے والے پروفٹ کو بہرحال اسے نکالنا ہوگا، سودی پروفٹ جو ہے جو اوپر کی رقم.
دیکھیں ہم نے بات کی ہے قرضہ لیا ہے
ٹھیک،
اور اب یہ سود دے گا
ٹھیک،
دینا پڑے گا نا اس کو
جی،
فیل حرام ہے
ٹھیک،
لیکن ایسا نہیں کہ سود اس کی انکم میں شامل ہوا ہے.
صحیح، یہ تو دے رہا ہے،
صورت یہ بن رہی ہے.
ٹھیک ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
ایک آدمی کاروباری بتایا جس کا موبائل اکاؤنٹس وغیرہ ہیں، تو شہر سے باہر کے کچھ لوگ ان کے اکاؤنٹ میں رقم بھجواتے ہیں اور وہ پھر فی ہزار پہ 20 روپے لے کر ان کے جو گھر والے ہیں ان تک وہ رقم پہنچا دیتا ہے. تو آیا اس طرح کرنا کہ وہاں سے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ رقم بھیجیں اور یہاں سے آپ 1000 روپے پہ 20 روپے چارج کر کے ان کے اہل خانہ کو نقد رقم دے دیں، تو ایسا کرنا کیسا؟
دیکھیں ایک تو آج کل موبائل کمپنیاں جو ہیں ان کے ہاں اس طرح کا ڈیلیوری سسٹم موجود ہے اور وہ اپنی سروس چارج کرتے ہیں، اور اپنی سروس جو چارج کر رہے ہیں اسی میں سے وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی فیس وغیرہ دیتے ہیں، عام طور پر لوگوں پر شاید بوجھ نہیں آتا. دوسرا یہ کہ پرائیویٹلی کوئی ایسا کر رہا ہو
جی،
اب پرائیویٹلی کوئی کر رہا ہے اور اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بھائی آپ نے گھر تک جا کے دینا ہے
جی،
تو گھر تک جا کے جو دینے کی سروس ہے اگر کوئی الگ سے مقرر کرتا ہے تو اس سروس کو مقرر کرتے ہوئے اس کا معاوضہ تو لیا جا سکتا ہے،
اسے بھی رقم پہ پیسے لینا نہیں کہلائے گا.
دیکھیں اس نے کچھ تھوڑی دیا ہے، اس کے پاس ایک چیز آئی وہ اس نے آگے بڑھائی،
امانت پہنچا رہا گویا تو.
ہاں
ٹھیک ٹھیک،
اس سے خود کسی کو قرضہ نہیں دیا.
یہ میں نے اس لیے پوچھا مصعب کہ بعض اوقات جو ہے نا خود بخود گلی محلوں میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مجھے خیال آیا کہ شاید کسی کو.
نہیں بہت پرانا واقعہ ہے، کم سے کم 110 سال پرانا واقعہ ہے، جب ڈاک خانہ سسٹم نیا نیا آیا تھا
جی
اور منی آرڈر کا معاملہ ایجاد ہوا.
صحیح،
تو کچھ لوگوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ جو منی آرڈر کے ذریعے رقم بھیجی جاتی ہے اور ڈاک خانے والے کو فیس دی جاتی ہے تو سودی معاملہ ہے.
ٹھیک ہے،
تو پھر میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک رسالہ مرتب فرمایا المنا و درر، اور اس میں ثابت کیا کہ بھائی یہ سودی معاملہ نہیں ہے، یہ اصل میں سروس بیس کام ہے جس پر آپ معاوضہ دے رہے ہیں اس کو. پورا رسالہ اسی مسئلے پر لکھا گیا تھا،
ٹھیک،
فتاوی رضویہ شریف کی جلد 19 میں یہ رسالہ موجود ہے.
ٹھیک، اسے اس کو بیلنس کیسے کریں گے؟ ویسے شاید عوام کے اپنے پریکٹیکل کے لیے تو بات کام کی نہ ہو، لیکن ایک سیکھنے کی بات ضرور ہے کہ یعنی مفتیان اکرام کسی بھی دور کے جو مفتیان اکرام ہیں ان کو شاید یہ چیلنج رہتا ہوگا، شاید آپ کو بھی رہتا ہو، کہ عوام کو اگر ہم دیکھیں عوامی اعتبار سے بات کریں یا نچلے طبقے کے علمی طور پہ نچلے طبقے کی بات کریں یا جو آدھا کام سیکھ کے بھاگے ہوئے افراد ہیں اس فیلڈ کے بھی ان کی بات کریں، تو مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے عوام ہر چیز کی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بس اجازت مل جائے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے تئیں ایسے یعنی احتیاط کا پہلو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی اس سے بھی روک رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ پہلو ہے، اگرچہ اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس سے میرے ذہن میں آیا کہ ایک مفتی جو ہے جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، ایک فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اسے ان دونوں ہی صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو مینیج کیسے کرتے؟
دیکھیں کوئی بھی چیز جب مینیج نہیں ہو رہی ہوتی
جی،
اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نااہلی ہوتی ہے.
صحیح،
ٹھیک ہے نا،
ٹھیک ہے.
تو جہاں چیزیں مینیج نہیں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے نااہلی ہے، وہاں پر صلاحیت نہیں ہے جس کام کی، اس کام میں ہاتھ ڈالنے والے لوگ موجود ہیں. تو علم فقہ جو ہے کوئی یتیم تھوڑی ہے، इल्मे फिक तो कुरान और हदीस का निचोड़ है।
सही।
अब जो हामिलान फिक हैं, हामिलान फिक आसमान से नहीं टपकते, वो साल हा साल 10-20 साल एड़ियां रगड़ते हैं,
सही।
इस इल्म में मेहनत मशक्क़त करते हैं, जब जाके उकदा खुलता है, अल्लाह ताला तौफीक देता है और वो फिर चीज़ों को अपने इल्म के मुताबिक आगे बढ़ा रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर फकीह और हर मुफ्ती
जी
पूरे के पूरे आलम फिक की दुनिया का बादशाह हो।
ठीक, यानी फिक के हर हर शोबे का।
हाँ, अक्सर ये होता है कि हर आदमी की जिंदगी में कुछ तहकीक होती है, कुछ वो सबका जो फुका गुजरे हैं उनकी तहकीक से इस्तेफादा कर रहा होता है।
ठीक,
99% तो सदियों से जो काम हुआ है उसी से इस्तेफादा लिया जाता है, बल्कि 99.99% कर लें आप,
ठीक है,
तो पहले से काम हुआ है उससे इस्तेफादा लिया जा रहा होता है। तो ऐसा मैंने कहा ना, यतीम नहीं है इल्मे फिक
जी,
तो 14 सदियाँ हो गई हैं, हर चीज़ मुरतब की गई है, उसूल बयान किए गए हैं, ज़ाबते कानून बयान किए गए हैं, आइमा मुज्तहिदीन हैं, उनके तलामीज़ा हैं, अहले मरातिब हैं, असहाबे तखरीज हैं, और इसके अलावा दिगर जो फुका के तबकात हैं इनकी तालीमात, इनकी किताबें मौजूद हैं।
ठीक,
उनसे इस्तेफादा करके मसला आगे बढ़ाया जाता है। अब वो आगे बढ़ जाए जिसने इन किताबों का नाम भी ना सुना हो, ठीक है, जिसे फतवा देने के उसूल ही ना पता हो
जी,
जिसने उतना पढ़ा ही ना हो कि बंदा अहले फतवा कहलाए, तो फिर ना अहली तो सामने आई ना, फिर चौके छक्के लग रहे होते।
चौके छक्के लग रहे होते, हमें आफियत अता फरमाए। जहन में तो मेरे इसी से मुतालिक और भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन सिलसिले का मौजू ये है नहीं, एक बीच में आपको एक काम की मजीद बात मिल गई। बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ। जी जनाब।
मुफ्ती अली असगर दामत बरकातहुम अलिया की खिदमत में यह है कि जैसे भी डॉलर की बात चली कि एक्सपोर्ट के हवाले से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर जो है ना, डॉलर की इसमें हमें बैंकों में रकम आती है, एक तरीका तो ये होता है, और एक तरीका ये होता है कि हमने पार्टी से, हमें पता है कि ये माल आ जाएगा और इतने डॉलर का हम उसको सेल कर देंगे और ये अगले महीने हमें डॉलर इतने आ जाएंगे। तो इसका एक और तरीका जो बैंक लॉन्च करता है वो फॉरवर्ड बुकिंग होता है। फॉरवर्ड बुकिंग से ये मुराद होती है कि जो इस वक्त रेट होता है ना, तो वो एक महीने की मुद्दत पर वो रेट ब्लॉक कर देते हैं। सपोज कि आज 272 रुपये का डॉलर है, तो वो एक मखसूस रकम, जैसे कि मैंने $10,000 बुक करा लिए, तो वो मेरे $10,000 बुक कर देंगे एक महीने की शर्त पे कि मैं एक महीने के अंदर अंदर उसके अगर डॉक्यूमेंट को दे देता हूँ या वो मेरे डॉलर्स आ जाते हैं, तो वो जो है ना मुझे आज के रेट पे, भले उस टाइम वो कोई भी रेट हो, 260 हो, 252 हो, 240 हो, जो मैंने आज इसकी बुकिंग कराई फॉरवर्ड बुकिंग, तो उस रेट से जो है ना कि मुझे पैसे मिलेंगे, तो क्या ऐसे शरण जायज है?
देखिए, जो सूदी बैंक ये काम करते हैं डॉलर बुकिंग की, वो तो निरा सूद है, खुला खुला सूदी मामला है, क्योंकि पैसे की पैसे के बदले उधार है, यानी वहाँ भी करेंसी है, यहाँ भी करेंसी है, और दोनों ही जो है ना वो बेलकाली बिलकाली भी है, ना आपने दी ना उन्होंने दी, और एक तरफ अदायगी हो तो भी प्रॉब्लम मौजूद हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं यहाँ पर। बाज इस्लामी बैंक भी डॉलर बुकिंग करते हैं, लेकिन वहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक खरीदो फरोख्त नहीं होती, वो एक वादे की बुनियाद पर बुक करते हैं डॉलर्स, कोई खरीदो फरोख्त नहीं करते। अगर तो वहाँ इसी तरह है जो मेरी मालूमात है, और मैं बाज़ाब्ता गया था एक मरतबा, एक मीटिंग की थी मैंने जब ये मामला बहुत ज़्यादा उर्ज पर था, तो वहाँ उनका यही कहना था कि हम इसकी बाकायदा खरीदारी का मुआहदा नहीं करते, हम एक प्रोमिस करते हैं। अब वो मायदा हो सकता है मज़ीद आगे जाके उसके मज़ीद कुछ अंडे बच्चे हों, कुछ मज़ीद जुजियात हों, तो उस मायदे को सामने रख के हमसे डिस्कस किया जा सकता है कि वो जो इस्लामी बैंक की प्रोडक्ट है किस हद तक ठीक है और किस हद तक नहीं। बाकी जो सूदी मामला है उससे बचना बेहद ज़रूरी है। बार लोगों ने बग़ैर किसी तमीज़ के कहा है कि जी कोई हर्ज नहीं है, ये तो सूद को हलाल करने वाली बात है, कैसे हज नहीं है, जब वो मामला ही सूदी है, जब वहाँ सेल हो रही है, एक तरफ करंसी, दूसरी तरफ करंसी, हम जिंस चीज़ें, अगर दो जिंस भी माने तब भी बिल्कुल बिल काली तो लाजम आएगी, ना उन्होंने अदायगी की ना इन्होंने अदायगी की, दोनों अदायगियाँ जो है उधार हैं, तो ये कैसे जायज़ हो सकता है?
मुझसे अभी काफ़ी सारी जो बात हुई उसमें एक याद आया, किसी ने मसला भेजा था, मैं पूछ नहीं सका था यहाँ पर, लेकिन बड़ा अहम है, आप खुद भी बयान करते रहे कि सुनार मार्केट में जो गोल्ड बिस्किट्स होते हैं इनकी खरीदो फरोख्त होती है बुकिंग की सूरत में, बुकिंग करा दी जी, मिसाल के तौर पर मैंने बुक करा दिया जी, मेरे क्या रेट है, ये रेट है, ठीक है, मेरे 10 पीस कहते हैं हमारे यहाँ मार्केट में, यानी 100 तोला सोना मेरा बुक कर लो। अब ये बुक हो गया है, ना लिया है ना दिया कुछ, ये बुक हो गया, शाम को मालूम किया हाँ जी क्या रेट है, अब वो बढ़ा है या कम हुआ है जो भी है, अब वो जी वो चलो जी बेच दो, ये भी फ़ोन पे हो गया। अब नतीजा क्या निकला, मैं नाजरीन के समझाने के लिए भी कह दूँ कि जिनकी फील्ड नहीं है, बिलफर्ज जिस वक्त मैंने फ़ोन किया था उस वक्त 2 लाख रुपये तोला था जब मैंने ख़रीदा था ये ज़बानी से कलामी, और जब मैं बेचने लगा हूँ तो उस वक्त 2,02,000 रुपये तोला है, तो 100 तोला के हिसाब से 2 लाख रुपये बन गए, 2,000 रुपये के फ़र्क से ना, तो अब ये आप इसको मना करते रहे।
देखें बात ये है कि ये तो हकीकतन खरीदारी भी नहीं है,
सवाल ये नहीं है,
सट्टाबाजी है,
सवाल ये
जी जी
ये तो आप फरमाते रहे, सवाल ये है कि किसी मार्केट का मुझे पता चला बकायदा मार्केट में कि जी उन्होंने एक दाढ़ी वाला शख्स लाके बिठा दिया जो कि कह रहा होता कि जी इसकी इजाजत है कोई मसला नहीं है मैं बैठा हूँ, तो अब वो आवाम जो है बेचारी, वो तो आप जैसे अभी बयान फरमा ही रहे थे और आपको इसका ज्यादा पता है कि वो तो नहीं पूछते ना कि जी डॉक्टर से तो शायद पूछ भी लें कि भाई तो आप डिग्री है कि नहीं है, ऑथेंटिक हो कि नहीं है, क्या है, यहाँ तो कुछ पूछना भी नहीं।
इतनी बड़ी गलती कर रहा था
जी,
ठीक है
जी, मुझसे ये सवाल है,
एक तो खुद गुमराही में पड़ा हुआ है और दूसरा लोगों को गुमराह कर रहा है
जी,
ऐसों के लिए हदीस पाक में आया है इस तरह के जो जाहिल लोग हैं कि खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे, तो ये असल में सट्टाबाजी है, उसके पास तो 100 तोला सोना होगा भी नहीं
जी,
वो खाली फिगर लिखता है
जी जी, ज्यादातर ऐसे ही होता है,
और इनको भी इनके पास भी पैसा नहीं है उसको खरीद लें
जी,
इनको भी खाली उस सट्टे में उस जुए में ऐसा डालना होता है
जी,
तो ये तो बिल्कुल हराम है, जुआ है।
ठीक चलिए जी, इसकी भी वजह तो हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा, मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तेजार अहकाम तेजार।